बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री सरस्वते नमः। स्वस्ते श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य को निर्विघ्नम् कुरु मे देवा, सर्वकार्य सु सर्वदा।
आइए, कहते हैं संत समाज कहती है, और जैसे कि फेरी हुई थी, कलश यात्रा हुई थी, तो मैयाएं भागवत जी को तो पीछे छोड़ जाती और खुद आगे चली जाती। तो देखिए, भाव को बार बार वंदन है, परंतु ये भी देख लिया करो कि कहीं व्यास जी भी होंगे, ढूंढनी पड़ती जगह जगह, मैया को बोलना पड़ता आपका भाव। और ये भाव ऐसी जागृत नहीं हुआ, कहते हैं कि भाव उनके हृदय में आता है जिनके ऊपर ठाकुर जी की असीम कृपा होती है। तो मानते हो ना कि ठाकुर जी की असीम कृपा है, तो ठाकुर जी की कृपा हम भक्तों के ऊपर ऐसी बनी रहे। तो संत समाज कहती है, बोले भैया, किस जीव के ऊपर, भक्त के ऊपर कब भगवान की कृपा प्राप्त होती है? जब वो गौ कथा या श्रीमद् भागवत कथा या सत्संग या अन्य कोई धर्म का कार्य श्रवण करता है। बोले जब अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते ना, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्यथा तो ठाकुर जी का जब भजन होता है, कीर्तन होता है, भागवत कथा होती है, या मान लो छोटा तो सत्संग ही होता है, तो नींद आने लगती है। कितनी भी कोशिश कर लेना, रुचि हो ही नहीं पाती। तो ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा है तो भागवत कथा में। अब देखो, बहुत सी मैया तो चली गई और बहुत सी मैया विराजमान है, तो उनकी तो रुचि नहीं थी। तो आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, तब आपकी रुचि भागवत जी के चरणों में रही है। कह दीजिए श्री राजा, बोलते रहा करो, नहीं तो सो जाओगी बैठी बैठी। ये कथा इतनी मीठी कथा है कि संत समाज कहते हैं कि अगर गोलियां खाओगे ना नींद की, तो भी इतनी मीठी नींद नहीं आएगी जितनी कथा में आती है। तो सो मत जाना बीच बीच में, इसीलिए भाव से बोलते रहा करो। जय श्री राधे। अभी भी कंजूसी कर रही है। हाँ, तो भाव से बोलते रहा करो। तो संत समाज कहते हैं, बोले ऐसे सुंदर कार्य, और वैसे भी किशोरी मैया जैसा अनुष्ठान, तो ये ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से ही होते हैं। हम सबके ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर और महाराज जी के ऊपर तो है ही है, उनका तो बताने का जरूरत है ही नहीं। तो सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा। बोले इस कृपा को क्या करना चाहिए? बोले ये भागवत रूपी गंगा है, और गंगा में क्या करते हैं? बोले भैया, गंगा में स्नान करो, जितना हो सके सप्त दिवसीय भागवत कथा में आप इस गंगा रूपी अमृत कथा में स्नान कीजिए। और ऐसा कोई भी पल ना हो इन 7 दिनों में, ऐसी कोई भी घड़ी ना हो जिस समय ठाकुर जी का नाम आपके मुख पे ना हो। कोशिश करो कि ठाकुर जी का नाम मुख पे आता रहे। इसीलिए संत समाज कहते, बोले देखो एक बात और कहते हैं, बोले भगवान की कथा, ठाकुर जी की कथा या गौ कथा कभी भी मनोरंजन भाव से नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई भागवत कथा को मनोरंजन की दृष्टि से सुनेंगे तो बोले उनको अपराधी माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं बोले चले कोई बात नहीं, दिन में वैसे ही तो खाली बैठे दो तीन घंटे, अच्छा टाइम पास होगा। बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से भक्त सोचते हैं बोले चलो दो तीन बढ़िया बढ़िया भजन सुन के आएंगे। कुछ लोगों का भाव होता है चलो व्यास जी को ही देख के आएंगे, कुछ गाएंगे, कुछ सुनाएंगे, कोई एक दो चुटकुला सुनाएंगे। तो कभी भी इस भाव से कथा में मत आइए कि मनोरंजन हो जाएगा, नहीं, हमेशा इस दृष्टि से ठाकुर जी की कथा श्रवण कीजिए कि ना जाने कब कौन से क्षण, कौन से पल, कौन सी घड़ी ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। क्योंकि संतों का मानना है कि हमारे हिंदू धर्म का सर्वोत्तम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा श्रवण इस भाव से करें कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस हमारे इस जीवन में आए, हमारा जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो, ठाकुर जी के चरणों में हमारी लगन लग जाए, ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए। और ये भाव देखिए पता नहीं कब कहां कैसे जागृत हो जाए, कुछ नहीं पता। जब फेरी हुई थी तो हम उधर जाके बैठे तो मैया आई थी, बोले आपके हाथ में मैंने गोपाल जी देखे थे, तो मेरा मन है कि मेरी गुड़िया के पास भी ऐसे ही गोपाल जी है। तो उन्होंने कहा, बोले मैं आपके गोपाल जी के लिए पोशाक बना के लाना चाहती हूँ। तो ये भावी तो था, देखो गोपाल को देख के उनके मन में श्रद्धा आई। तो इस भाव से कथा श्रवण कीजिए, ठाकुर जी के चरणों की ओर हम चलें, ठाकुर जी के चरणों में हमारी श्रद्धा लग जाए। सो संत समाज कहते हैं, बोले जब प्रारब्ध कर्म मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं तब इसके ऊपर ठाकुर जी की असीम अनुकंपा होती है, तब ये भागवत कथा पांडाल में जा पाता है। देखिए ना तो आपने अपना पिछला समय किसी ने नहीं देखा, ये जी रहे हैं जिस समय में ये सब ठाकुर जी की कृपा है, और आने वाला समय किसी ने नहीं देखा। तो इसीलिए बोले संत समाज कहते हैं जितना भी समय आप जी रहे हो मुख पे सिर्फ राधे राधे नाम होना चाहिए। कुछ भक्त आज राधे कृष्ण भूल गए, राम राम जी भूल गए, वो अलग ही दुनिया में पहुंच गए। तो संत समाज कहती है बोलो हेलो हाय छोड़िए और राधे राधे। तो इन 7 दिनों आपने क्या करना है, बोले सुबह जब भी उठोगे तो सबसे पहले क्या बोला है, हाँ जी अब सब भूल जाइए 7 दिन। और 7 दिन नहीं, मैं तो ये कहूं कि जब तक आपका जीवन है तब तक राधे राधे बोलिए, तब ही कल्याण होगा। संत समाज का मानना है बोले जब भी कहीं कथा का आयोजन होता है, श्रीमद् भागवत कथा का कहीं भी आयोजन हो, तो मानव किस उद्देश्य से कथाएं कराता है, बोले कुछ ना कुछ तो इसका उद्देश्य होगा। और देखिए हम कलयुगी इंसान निष्काम भक्ति तो कर नहीं सकते, कोई ना कोई कामना रखते हैं। बोले अगर कथा कराएंगे तो इसका लाभ क्या होगा, कोई ना कोई लाभ भी तो होना चाहिए। बोले अगर इसका लाभ हुआ इसका फिर उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ हम कथा कराते हैं। तो आप सब माताएं ध्यान से सुनने की कोशिश करें, एक बहुत ही साधारण से शब्दों में श्रीमद् भागवत जी का अर्थ बता दिया। बोले श्री यानी लक्ष्मी, मद यानी अहंकार, भागवत भैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य और तैसे तारंतरण। यानी जो भी मनुष्य जो भी जीव इस लक्ष्मी रूपी अहंकार को त्याग करके बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य की शरण में आ जाएगा, बोले उसी का इस संसार रूपी सागर से तारंतरण हो जाएगा। तो इसीलिए जो इन सभी चीजों का यानी लक्ष्मी रूपी इस अहंकार का त्याग कर देगा उसी का बेड़ा पार हो जाएगा। बोले यही श्रीमद् भागवत का अर्थ है। बोले फिर ये भागवत होती क्यों है, करवाई क्यों जाती है? बोले मानव के अंदर जीव के अंदर ज्ञान और वैराग्य जो युगो युगो से सोए हुए ना, वो जगे, वो जागृत हो। इसीलिए जागृत होने के बाद ये भक्ति के मार्ग पर चले। सिर्फ ये उद्देश्य कि जीव अपने जीवन में चेष्टा करे कि भागवत कथा करवाए। बोले अच्छा, अगर भागवत कथा कराएंगे तो भक्ति की ओर मन जाएगा। बोले जब भी सत्संग श्रवण करेंगे तो इस जीव को सत्संग में जाने के बाद पता चलता है कि हमने अपने जीवन में कौन सा तो शुभ कार्य किया और कौन सा अशुभ कार्य किया। वरना तो बिना सत्संग में जाए तो सब अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। सही है, जो हो रहा है वो भी ठीक और जो नहीं हो रहा वो भी ठीक। अरे भैया, सबसे बुरा दिन तो वो दिन है जिस दिन हरि कथा आपके कानों में ना पड़े। कोई बात नहीं, अगर कथा सुनने ना आ पाए तो घर में भागवत जी को विराजमान कीजिए, भागवत जी का पाठ कीजिए, नित्य प्रतिदिन भागवत जी का पूजन कीजिए। और देखिए संतों ने यह भी कहा है, देखिए वेद व्यास जी ने 17 पुराण पहले रचे हैं और 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। यानी 17 पुराणों की रचना भागवत महापुराण से पहले हुई। और ऐसा बताया गया है कि उन 17 पुराणों को एक एक बार सुन लो, उनका संस्कृत में पाठ कर लो, उन्हें श्रवण कर लो। उनका पाठ करने का फल है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। 17 पुराणों को पढ़कर के उनका फल मिलेगा श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना। और आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं जो 7 दिन, यानी आज का दिन तो गया, यानी अगले कितने दिन बचे? 6 दिन ठाकुर जी की कथा श्रवण कीजिए। और 18वां पुराण यानी श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको सुनने का फल है साक्षात बिहारी जी का दर्शन होना। और कहते हैं कि भैया भागवत तो ठाकुर जी का, बिहारी जी का साक्षात्कार कराने वाला महाग्रंथ है। और कहते हैं कि ठाकुर जी की झलक हृदय में प्रकट हो जाए वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की, बोलिए किशोरी मैया की। अगर जल्दी ना हो तो थोड़ा सा समय और ले लें। आइए थोड़ा सा समय और लेंगे क्योंकि आज मैयाओं ने फेरी लगाई थी, तो थकना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप हरियाणवी मैया हो तो वो तो बड़ी स्ट्रांग होती है। परंतु फिर भी क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो मैयाएं थक गई होंगी, विश्राम भी करेंगी, तो थोड़ा समय और लेंगे, उसके बाद में भागवत जी का विश्राम कर देंगे। तो कहते हैं भैया हर समय किसका चिंतन करना है? बिहारी जी का हर समय चिंतन करना है। एक छोटी सी कथा भी आती है। बोले वृंदावन के एक बहुत महान संत थे, बड़े ही विलक्षण संत थे, और कहते हैं कि भागवत जी में इतना अनुराग था, इतना प्रेम था। देखो ना तो कभी वो किसी स्कूल में पढ़ने गए थे, ना किसी विद्यालय में गए थे, लेकिन फिर भी भागवत जी में इतना अनुराग था कि अपनी कुटिया में भागवत जी को विराजमान करके रखा था। और हमारा संस्कृत तो दूर, उनको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अपनी कुटिया में भागवत जी को विराजमान किया और नित्य प्रतिदिन भागवत जी का पूजन करते, अर्चन करते, रोज भागवत जी को पुष्प अर्पित करते, चंदन चढ़ाते, तुलसी मंजरी चढ़ाते और दैनिक आरती उतारते थे। उन संत जी का यह नियम था। एक बार कोई व्यक्ति उनके पास गया, बोले महाराज एक बात बताइए, आपको तो हिंदी भी पढ़ना नहीं आता, संस्कृत भी आप नहीं पढ़ना जानते, और कुटिया में आपने भागवत जी को विराजमान करके रखा है, तो फिर आप एक बात बताइए कि आप भागवत जी के श्लोकों का पाठ कैसे करते होंगे, कैसे श्लोक पढ़ते होंगे, पर आपकी श्रद्धा तो अटूट है। तो जानते हो संत जी का भाव क्या था? बोले भैया आप पूछ रहे हो कि हम नित्य प्रतिदिन भागवत जी का वंदन पूजन करते हैं और श्लोकों के बारे में आपने कहा कि हमें तो पढ़ना नहीं आता, तो आप संस्कृत में पाठ कैसे करेंगे? तो बोले भैया इस श्लोक की चिंता तुम करो, क्योंकि मुझे श्लोक की चिंता नहीं है, मुझे तो उस श्लोक की चिंता है। अगर इस श्लोक की चिंता करनी है तो वो चिंता आप करते रहो, मुझे तो उस श्लोक में जवाब देना है। यहां तो समय कट रहा है, जैसे कट रहा है कट जाएगा, लेकिन वहां उस श्लोक में महाराज बिहारी जी प्रश्न करेंगे, यमलोक से यमराज जी प्रश्न करेंगे, बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो इन 7 दिनों में खुद को इतना तैयार कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि बिहारी जी को जाकर जवाब दे सको। बोले हाँ महाराज। देखो ये मत सोचना कि ठाकुर जी को क्या मालूम, इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी सृष्टि है, तो पाटोदा गांव का क्या मालूम पड़ेगा। बोले बिहारी जी की नजर में वो गांव सबसे पहले लिस्ट में होते हैं जहाँ बिहारी जी की कथा होती है, और यहाँ तो शायद दूसरी तीसरी बार है। तो भैया आप सबका नाम तो चढ़ गया, तो इसीलिए ठाकुर जी का वंदन करना चाहिए। इस लोक की चिंता मत करो, घर में काम तो जाके कर लेना, वो तो सालों साल का है, आपका नित्य प्रतिदिन का है ही। तो उस लोक की चिंता जिसने कर ली वही जीव भव से पार हो जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और संत जी का जब ऐसा भाव था ना, तो देखिए 12 वर्षों तक संत जी ने नित्य प्रतिदिन भागवत जी की पूजा अर्चन इसी तरह से की, और 12 वर्षों के बाद संत जी को भागवत जी में से श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। बोलिए भागवत भगवान की। तो ये है महाराज, अगर श्रद्धा हो जाए और ठाकुर जी के चरणों में लगन लग जाए और राधे रानी के चरणों में भाव आ जाए, तो पता नहीं कब कहां कौन सी जगह ठाकुर जी का दीदार हो जाए। आइए भाव के साथ बिहारी जी को मनाइए, और सबसे पहले बिहारी जी जब मानेंगे, जब सबसे पहले आप राधे रानी को मनाओगे, क्योंकि जहां श्री राधिका रानी होंगी वहां बिहारी जी पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। बोल दीजिए भाव के साथ, बोलिए श्री राधिका रानी की। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करेंगे भाव के साथ और गाएंगे, और कह दीजिए भाव के साथ कि हे ईश्वर कि ऐसी तान सुना दे कि जो राधिका रानी हे लाला हे कृष्ण हमारे इस भाव से प्रसन्न हो जाए। कि सवरिया ऐसी तान सुना, कि ऐसी तान हे माधव
मैं नाचूं तू गा,
गाइए भाव के साथ और तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे
सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना,
ओ सवरिया ऐसी तान सुना,
सवरिया ऐसी तान सुना,
कृपा बरसाते रहना
हो रस की धार बहे तन मन में,
रस की धार बहे तन मन में,
अनुपम प्रेम जगे जीवन में,
अनुपम प्रेम जगे जीवन में,
हो अनुपम प्रेम जगे जीवन में,
अनुपम प्रेम जगे जीवन में,
और हे बिहारी जी
तेरी याद न बिसरे एक पल,
तेरी याद न बिसरे ने पल,
तेरी याद न बिसरे एक पल, ऐसा मस्त बना सवरिया, सवरिया ये हो सवरिया, ऐसी तान सुना
सवरिया, ऐसी तान सुना
सवरिया, ऐसी तान सुना
सवरिया, ऐसी तान सुना,
तेरे नाम को मैं भूल जाऊं,
प्रेम मगन झूमूं कुंजन में,
प्रेम मगन झूमूं कुंजन में,
हो प्रेम मगन झूमूं कुंजन में,
प्रेम मगन झूमूं कुंजन में,
हो ब्रज की लता पता निधि वन में,
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 रसिक जनों की पद रच दे कर, रसिक जनों की पद रच दे कर, वृंदावन में बसा सवरिया,
जय हो
सवरिया,
जय हो
सवरिया, ऐसी तान सुना
सवरिया, ऐसी तान सुना।
और देखिए जब भी ठाकुर जी का कीर्तन हो ना तो क्या करना है, बस दोनों हाथों की ताली भाव के साथ बजानी। जितना खुश बिहारी जी कीर्तन से होते ना उतना किसी से नहीं होते, इसीलिए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाइए और जब तक भजन खत्म ना हो ताली बजती रहनी चाहिए और भाव के साथ गाना है
सवरिया ऐसी तान सुना,
सवरिया ऐसी ताल सुना
ऐसा भाव रखा रहे कि देखिए ये जीवन बहुत छोटा सा है। इस क्षण हम यहां बैठे हैं, अगले क्षण का किसी को नहीं मालूम। और संतों का मानना है, बोले जब भी श्रीमद् भागवत कथा होती है तो श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा को श्रवण करने का नियम क्या है और कथा क्यों सुनी जाती है और इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन होता है, जिसको हम भागवत जी का महात्म्य कहते हैं, जिसके ऊपर आइए संक्षिप्त में नजर डालेंगे। और भागवत जी में बहुत सुंदर सा श्लोक दिया, श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
बोले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, क्योंकि श्रोताओं जो भगवान जगत की उत्पत्ति करते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत का पोषण करते हैं, और अधर्म बढ़ जाने पर जो भगवान जगत का संहार करते हैं, उन श्री हरि के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। और देखिए तापत्र विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश श्री हरि करते हैं। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है, बोले किस तरह के ताप, किस तरह के तीन ताप गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है,
कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजे कहूं ही व्यापा।
बोले भैया
आध्यात्मिक,
भौतिक ताप यानी सीधे से अक्षरों में कहें तो बुखार आ जाना आदि रोगों से जो भी पीड़ित होते हैं वो सब भौतिक ताप, और उनका उपचार केवल यही है कि आप किसी अच्छे वैद्य को दिखाइए और उपचार कराइए। बोले दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, यानी अकाल पड़ जाना, बारिश हो जाना आदि आदि, जिससे बचने का उपाय है ठाकुर जी का भजन कीजिए। और आध्यात्मिक ताप यानी मानसिक पीड़ा, तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है, और कलयुग में तो बहुत साधारण सा कह दिया,
हो कलयुग केवल नामी नर पुत्र रहे पारा।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदश रतिया जी
लाल की। बोले भैया आध्यात्मिक ताप मानसिक पीड़ा, जीव के दिमाग में हमेशा वो अपनी टेंशन में खोया रहता है, जिसका उपाय है कि जितना हो सके भगवत कथा श्रवण कीजिए, सत्संग श्रवण कीजिए। तीन तरह के ताप बताएं और देखो संसार में नजर घुमा के देखें तो कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां इन तीनों तापों में से कोई ना कोई ग्रस्त ना हो, कोई ना कोई घिरा ना हो। इसीलिए संत समाज ने कहा है भैया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। थोड़ा थोड़ा दुख सबके पास है, किसी के पास धन ज्यादा है उसको ये टेंशन कि इसको कहाँ छुपाऊं। डिमोनिटाइजेशन भी हुआ था, नोटबंदी भी हुई थी, बट फिर भी नहीं छुपा। किसी के पास ये टेंशन है कि भैया धन नहीं है कहां से लाए। कोई तन से दुखी है, तन में अनेकों प्रकार के रोग हैं, किसी को दर्द है, किसी को बैठा नहीं जाता। और भैया भागवत कथा में तो 2-3 घंटे बड़ा मुश्किल हो जाता है बैठना। बोले व्यास जी क्या करें, इतने दर्द से पीड़ित है। तो हर जीव किसी ना किसी ताप से ग्रस्त है। सुख कहाँ है? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। तो सबसे अच्छा है भैया राम जी के दास बन जाओ। बोलो प्रभु जी तुम हमारे और हम तुम्हारे, इतना तो कह ही सकते हो। आज कलयुग में भगवान नाम में इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी लक्ष्मी मैया में श्रद्धा है। और जब तक देखो लक्ष्मी मैया भी कहती है, बोले जितने लक्ष्मी से दूर जाओगे ना लक्ष्मी उतने तुम्हारे पास आएगी। और हम उल्टा करते हैं, लक्ष्मी मैया के पीछे पीछे भागते हैं, इसी लक्ष्मी मैया हमसे दूर चली जाती। अरे निष्काम भक्ति कभी करके तो देखो, एक आध बार मन से निकाल के तो देखो, कोई बात नहीं, देखते मैया आएंगी कि नहीं। ऐसा भाव अगर मन में आ जाए तो संत समाज ने ये भी कहा है भैया अरे पागल किस दुनिया में खोया हुआ है। कोई संत महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। अरे भैया इस संसार में सबसे ज्यादा धनी कौन है? बोले जिसके पास गोविंद नाम का धन है। क्योंकि भागवत जी के प्रथम देव जिन्होंने गैया मैया को चराया वो ठाकुर जी, वो गोविंद हैं। तो प्रथम श्लोक में श्री ठाकुर जी का वंदन किया गया, फिर आदरणीय श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वो आचार्य, वो महापुरुष, वो गुरुदेव जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, उन श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन करते हुए। और देखिए जहां भी कथा हो, जहां भी भागवत जी का अनुष्ठान हो, तो बोले ऐसी पवित्र जगह होनी चाहिए जहां इधर उधर से कोई शोर नहीं आए और भक्तों के कान भागवत की ओर लग जाए। परम शांति जहां जिस स्थान में हो, ऐसी जगह भागवत जी का अनुष्ठान होना चाहिए। इधर एक बहुत ही परम शांति देने वाली जगह है, ऐसा स्थान जहां बहुत सारे संत इकट्ठा हुए हैं, वो है नैमिषारण्य क्षेत्र। एक बार भक्तों नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, 88,000 ऋषि वहां इकट्ठा हुए हैं। संत मंडली इकट्ठा हुई तो कहते हैं जहां संत इकट्ठा होते हैं वहां सत्संग होना शुरू हो जाता है। अब तो इधर संत मंडली जहां इकट्ठा हुई है वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। मैयाएं थोड़ा सा ध्यान देकर सुने, क्योंकि हम भागवत जी के चरणों में भागवत मैया में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो उन 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ है। देखिए ये जो श्री सूत जी महाराज हैं, आयु में बहुत छोटे पर ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान बहुत है। केवल आयु वृद्ध नहीं है, आज जैसे ही सभी ने देखा है श्री सूत जी महाराज को एक उच्च आसन पर विराजमान किया है और श्री सूत जी महाराज के चरणों में सोनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। तो आइए हम सब भी भागवत जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो अपने अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करें और गुरुजी के चरणों में भाव से गाएं, क्योंकि बंधुओं देखिए संसार दुख का घर है। सुख कहीं मिलेगा तो बोले कहाँ मिलेगा, या तो भगवान के चरणों में मिलेगा और या फिर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इसीलिए कहा कि सुख का साथी सब जगत और दुख का नाही कोई, और दुख का साथी साईया केवल सद्गुरु होए। सुख का जाति साथी जगत होगा लेकिन दुख के साथी श्री सद्गुरुदेव भगवान होंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, ओ सर मानुष जन्म का बहुर न बारंबार। क्योंकि श्री सद्गुरुदेव के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद तो खड़े काकी लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए अपने अपने गुरुजी का अपने मन में ध्यान करें और गुरुजी के चरणों में भाव के साथ वंदन करेंगे। भाव के साथ जो शरण गुरु की आया, और कहेंगे भाव के साथ कि जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। और इसीलिए भाव के साथ कह दीजिए जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक।
जाए,
संकट के बादल चढ़ जाए,
क्योंकि जिसने हरि नाम कमाया,
जिसने हरि नाम कमाया,
यह लोक सुखी परलोक सुखी,
जिसने चरण में आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी,
जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी,
जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी।
अभी आइए ठाकुर जी के चरणों में एक भजन के भाव के साथ चलेंगे। और जैसे कि अभी महाराज श्री ने कहा कि आप गैया मैया को रोटी डालते हो और जो दो तीन दिन की रोटी हो जाती है उसको भी कुछ मैयाएं डाल देती हैं, तो आप ऐसा भाव रखिए कि अगर आपको दो तीन दिन की रोटी दे दी जाए कि आप खा पाओगे नहीं ना, तो तो फिर मैया भी तो हमारी मैया है, फिर हम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आगे से मैयाएं ये हाथ जोड़ के निवेदन है। और दूसरा कि पॉलीथिन के अंदर रोटियां बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि महाराज श्री की मैंने वीडियोस देखी थी, जो ऑपरेशन गैया मैया का हुआ था, तो इतनी सारी पॉलीथिन मैया के पेट से निकली है। तो आप मैयाएं हैं और मैया मैया का भाव अच्छे से समझ सकती है, तो इसीलिए करवत प्रार्थना आप सभी मैयाओं से। और तीसरा कि कल 10 बजे से भागवत जी शुरू होंगी, भागवत जी का यहाँ गायन होगा और 1 बजे तक। तो आप मैयाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय से आ जाएं और फिर भागवत जी को श्रवण करें। अगले 6 दिन है आपके पास, कल से 5 दिन रह जाएंगे, तो समय से मैयाएं आएं और अपना काम थोड़ा जल्दी से निपटा लिया करें। और एक और है कि मैयाएं अपने घर वालों से जाकर के बोले कि ज्यादा से ज्यादा दान हमारी मैया के लिए करें, क्योंकि आप अगर बोलेंगे और आप अपनी सखियों को भी कथा में लाएं और उनको गौ की महिमा बताएं, अगर ये नहीं कि भाई दान नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप 1 रुपया भी मैया के लिए दान कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आपसे बने वो जरूर कीजिएगा। बोलिए गैया मैया की। आइए भाव के साथ चलेंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ, और अपनी जिव्या से भी गाएंगे और कहेंगे भाव के साथ,
बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा।
गाने भाव के साथ, क्योंकि
बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा।
बेड़ा पार ऐसे नहीं होगा, दोनों हाथों की तालियां उठाइए हाथ, और जो ठाकुर जी को नाच के सबसे ज्यादा बनाए, सबसे ज्यादा कृपा उसके ऊपर होगी। उठाइए दोनों हाथ और भाव के साथ गाइए,
ओ बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा।
कभी आते जाते, कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते
के बिना रोशनी ना आए जैसे।
राधे राधे श्याम मिला दे, इसीलिए ना जाने कि कभी आते जाते आते आते जाते कभी आते जाते फ्रिज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा,
कभी आते जाते फ्रिज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा।
मैयाओं से यही निवेदन करेंगे कि कल समय से आइएगा।